सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
संजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
संजीव जी। सबसे पहले तो आज के घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो एक ही दिन में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में करीब 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ होने का कार्यक्रम रहा है, तो इसे आप सिर्फ विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं या आप इसके पीछे सरकार की एक ऐसी सोच देखते हैं जहां पर पूरे देश में लगातार विकास को और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है?
जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि इस सरकार की प्लान यही रही है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो विकसित भारत के लिए हर कोना भारत का जो है वो विकसित होना चाहिए, और इस फील्ड में, इसी श्रृंखला में ये जो आज के प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये प्रधानमंत्री ने कुछ इनॉग्रेट किए हैं, कुछ का फाउंडेशन स्टोन ले किया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। अब आप नॉर्थ में अगर देखें तो दिल्ली से ऊपर नॉर्थ में चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर है जो नॉर्थ पूरे को केटर करता है, जो स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग वहां आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी खुद में है। तो दिल्ली के नॉर्थ में एक मेजर सेंटर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भी करीबन 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इसके अलावा पंजाब में करीबन 5200-5400 करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवेज के हैं, और हरियाणा में करीबन 14,500-15,000 करोड़ के। तो टोटल में 25,000-26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस एरिए की अगर आप सिग्निफिकेंस समझें, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा भी साथ लगता है, तो एक पहले बॉर्डर स्टेट ही था पूरा, पंजाब एक ही था
जी।
तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब में बहुत अरसे तक, दो दशक पहले आतंकवाद भी रहा और उससे जूझता रहा, तो डेवलपमेंट कहीं पीछे चली गई। तो उसको पेस अप करने के लिए, और जैसे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ईज ऑफ लिविंग के लिए भी ये जरूरी हैं। और दूसरी बात, एक आज जो सबसे सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी कि कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन।
मैं बिल्कुल इसी पर आने वाला था, मैं आपसे पूछने वाला था कि आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो रेलवे के इतिहास में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की भविष्य की दिशा है, उसमें बदलाव होना है, और भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें परिचालन की स्थिति में है, लगातार उन पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हम लगातार इसको बढ़ावा देते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो हमारे आधारभूत ढांचे और जो हमारी रेलवे की व्यवस्था, उसे कैसे आकार देंगी?
जी बिल्कुल, इंडियन रेलवे जो पहले से बहुत आधुनिक हो चुका है, हर रोज नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस, एडिंग न्यू लाइंस, नई परियोजनाएं, और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरा एफर्ट किया जा रहा है। तो आज की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब उन देशों में आ गया है जिनके पास बहुत कम टेक्नोलॉजी है। एक तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन प्रोपेल्ड जो इसके इंजन है, बेसिकली आप वाटर वेपर्स बाहर छोड़ता है, तो देर इज जीरो पोल्यूशन। सो जो एमिशन गैसेस जो पहले हैं, पहले आप देखोगे तो पहले स्टीम इंजन यूज हुआ करते थे, तो कोयला यूज होता था तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन आई, तो ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे ट्रैक्स की हो चुकी है आज की डेट में। लेकिन एनर्जी सिचुएशन को भी देखते हुए बहुत जरूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना। सो हाइड्रोजन ट्रेन इसी श्रृंखला में एक मॉडल है जिसमें आप हाइड्रोजन सेल प्रोपेल्ड इंजन लगाएंगे, जिससे एक तो पोल्यूशन नहीं होगी और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो एनर्जी प्रेशियस है, एनर्जी और चीजों में लगानी है, तो ट्रेन चलाने की जगह हाइड्रोजन यूज करेंगे। और आपको बता दूं कि भारत अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ US, चाइना, फ्रांस और जर्मनी और जापान के पास है, और अब इंडिया के पास भी है
जी।
और ये जो इंजन है 1300 हॉर्स पावर का इंजन, मतलब वर्ल्ड का माना जा रहा है कि सबसे पावरफुल इंजन है इसके। ट्रेन में 10 डब्बे हैं और करीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जींद और सोनीपत के बीच में। और ये भी हेरिटेज, जैसे हरियाणा को माना जा रहा है कि बड़ा हमारी हेरिटेज से जुड़ा हुआ है, वह महाभारत हुई तो हेरिटेज के साथ हरियाणा को जोड़ते हैं, तो ये हेरिटेज सिटीज हैं एक तरह से दोनों को जो जोड़ रहे हैं।
इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कि उनके क्या विचार हैं।
आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ भी जाता है कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर के हमारी जो सोच है, जो गोल हमने डिसाइड करके रखे हैं, उस दिशा में भी भारत लगातार बढ़ रहा है। अब उसमें ये बड़ा कदम होगा।
जी बिल्कुल, कार्बन इमिशंस तो खत्म ही हो जाएंगी, ओवर गैसियस इमिशंस जितनी भी हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि ये सिर्फ हवा में हाइड्रोजन यूज कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है, तो वाटर वेपर्स छोड़ रहा है, और ट्रेन की ऐसा नहीं कि तेज नहीं चलेगी, 75 किलोमीटर की मैक्सिमम लिमिट है इस ट्रेन की। इसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको आगे भी और एक्सटेंड करेंगे, ये फर्स्ट ट्रेन है लेकिन इसको और ट्रेन भी इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रैक को भी एक्सपेंड करेंगे।
वैसे विकास की कई योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, जिसका इंतजार एक लंबे समय से देश में किया जा रहा था, इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिससे कि यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि देश में एक्सप्रेस वे का एक तरह से पूरा एक तंत्र बनता जा रहा है कि पूरे देश को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि यात्रा आसान हो और जो हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था है उस पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़े। आपको क्या लगता है?
जी बिल्कुल, आज की डेट में करीबन 6-8 लाख करोड़ का, ये थर्ड मोदी गवर्नमेंट में इतने लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर फोकस है और जितनी एक्सप्रेसवेज बन रही हैं इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, सिर्फ ना सिर्फ लोगों का आवाजाही में समय बच रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें भी कॉस्ट की कमी हो रही है। जैसे टोल ब्रिजेस को भी ऑटोमेटिक किया जा रहा है, आपको रुकना ना पड़े, समय कम लगे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, मैन पावर वेस्टेज ना हो। तो ये सब करते कराते अब जैसे देहरादून की अभी एक्सप्रेस वे जब कुछ महीने पहले इनॉग्रेट हुई है, वहां देहरादून पहुंचने में दिल्ली से 5-6 घंटे लगते थे, आज की डेट में 2-2.5 घंटे में बंदा पहुंच रहा है। सिमिलरली साउथ में, पूरे इंडिया में इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फोकस मेजर दिया जा रहा है। और ये दिल्ली से कटरा एक मेजर, माता वैष्णो देवी है वहाँ और बहुत लोग वहाँ आस्था की वजह से भी जाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है अमृतसर को जोड़ते हुए, पूरे पंजाब को, हरियाणा को जोड़ते हुए, इससे कॉस्ट बहुत कम होगी और ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी।
पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं।
जी अब मेजर पुश दिया जा रहा है कि बॉर्डर स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करनी है। जैसे आज एक कबीर ट्रेन का नाम है संत कबीर के नाम पे, छियाटा से लेकर वाराणसी तक। अब छियाटा गुरु रविदास जी के साथ माना जाता है, लेकिन छियाटा है कहाँ? ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के वाघा बॉर्डर से थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेशन है अटारी वाघा है, लेकिन उससे पहले वाला स्टेशन जो है वो छियाटा है, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है अमृतसर से भी आगे। तो वहां से ट्रेन जुड़ रही है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ गए आप। तो आप ये देखिए कि कितने डेवलपमेंट को पुश दिया जा रहा है बॉर्डर स्टेट में, कि वहां कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, उससे डेवलपमेंट भी होगा और विकसित भारत तभी हो सकेगा जब सारे स्टेट्स डेवलप।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जैसे कि कई सारी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हाईवे परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अब सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि सड़क निर्माण की जो कनेक्टिविटी उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी हो, लॉजिस्टिक्स के लिए भी अच्छी सुविधाएं हमें मिल सके, कृषि और रोजगार को भी बढ़ावा मिले। ऐसे में हरियाणा में जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, अस्पतालों का लोकार्पण किया गया, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां पर कि डॉक्टरों की उपलब्धता हो, मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का काफी ध्यान रहता है।
जी बिल्कुल, और अगर आप देखा जाए तो भिवानी बिल्कुल सेंटर ऑफ हरियाणा में पड़ता है और एक तरफ नारनौल, तो एक मेडिकल कॉलेज भिवानी में है, एक नारनौल में है, साथ में एक हॉस्पिटल भी है नारनौल में। तो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी यहां से दिल्ली से बाहर जाएं तो रोहतक में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ एक अच्छा हॉस्पिटल है पीजीआई रोहतक में। तो हरियाणा में ये बढ़ावा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो हिसार में भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, तो एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में ये बहुत एक अहम स्टेप है कि रूरल बैकग्राउंड से लोगों को चिकित्सा पहुंचे, हेल्थ चिकित्सा पहुंचे, अच्छी चिकित्सा मिले उनको, ताकि उनको दूर स्टेशन्स में ना जाना पड़े। तो और चंडीगढ़ में भी, जैसे चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर माना जा रहा है, तो आज जो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें पीजीआई में एजुकेशन और हेल्थ केयर में दोनों में है,
मदर एंड चाइल्ड सेंटर
सेंटर का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
आज यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है, यहाँ एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था, तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है।
संजीव जी, आपको ये लगता है कि भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वस्तरीय तरीके से ध्यान दे रहा है, ऐसे संस्थान तैयार कर रहा है जहां पर किफायती दाम पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और आयुष्मान योजना का भी इसमें बड़ा रोल रहा है?
जी बिल्कुल, यू नो आप अगर पहले देखें तो भारत में एक एम्स थी दिल्ली में, आहिस्ता आहिस्ता पूरी विजन से चले हैं कि एम्स पूरे कंट्री में उस एक नेटवर्क बनता जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर एम्स जैसे सेंटर्स पूरे देश में बनेंगे तो उससे यू नो सारे कॉर्नर्स में यू नो पहले हर आदमी जिसको क्रिटिकल केयर चाहिए होती थी वो एम्स में दिल्ली में आते थे, आज की डेट में वो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पे भी बर्डन बढ़ता रहता था, तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब कहीं हर स्टेट में बनता जा रहा है, हर रीजनल सेंटर में एक एम्स सेंटर बनता जा रहा है। सिमिलरली एजुकेशन हब्स भी बनते जा रहे हैं, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई थी पहले पुरानी सरकारों में, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लॉन्च करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी सरकारें जो ब्रिटिश टाइम के रेलवे स्टेशन बने हुए थे वो वैसे के वैसे ही थे, कहीं उनको ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे। तो ये बहुत जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेलवेज का नेटवर्क पूरा डेवलप करना, रेल ट्रैक्स नए करने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अनाउंसमेंट्स हो जाया करती थी, हमने भी सुना है कि पहले रेल मंत्री जब बजट प्रेजेंट किया करते थे, रेल बजट अलग होता था, तो लोग देखते थे सुनते थे पार्लियामेंट में कि नई ट्रेन, इतनी सारी नई ट्रेन लगा दी, लेकिन वो इंप्लीमेंट होता ही नहीं था, कितने कितने दशक लग जाते थे उनको इंप्लीमेंट करते वक्त। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं काम करने में, विश्वास रखते हैं और ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, यू नो आम नागरिक की को अच्छी लाइफ जी सके। और जो ये हाइड्रोजन ट्रेन का जो एग्जाम्पल था वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मतलब जा रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, और वो मेक इन इंडिया का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर जैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है तो ये सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है
बिल्कुल
भारत को आगे बढ़ने के लिए।
आपको क्या लगता है कि विकास की यात्रा में भारत आज कहां पर खड़ा है?
नहीं बिल्कुल, भारत अब बहुत तेज रफ्तार से आगे चल रहा है, जो पहले रफ्तार बहुत धीमी थी अब भारत ने वो रफ्तार पकड़ ली है और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम हाइड्रोजन के लिए लगातार काम करते रहेंगे और हाइड्रोजन हम बनाएंगे ताकि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और देश का पैसा है वो देश में ही रहे और विकास के काम आए।
जी बिल्कुल, पहले इक्विपमेंट मॉडर्नाइज करने के लिए इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया जाता था
जी।
अब मोस्टली क्रिटिकल पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, भारत में ही क्रिटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन में भी अभी लास्ट कैबिनेट में मंजूरी दी गई सेमीकंडक्टर 2 मिशन, सिमिलरली मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में यू नो नई स्कीम लाई। तो ये सब एफर्ट्स जो हैं भारत को विकसित बनाने की श्रृंखला में एक मेजर माइलस्टोन्स हैं। भारत मतलब मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में बहुत आगे जा चुका है और आगे चलते वक्त और आगे जाएगा। यू नो विकसित देशों के बीच में आज की डेट में हाइड्रोजन ट्रेन का आपने एग्जांपल दिया, बाकी सब देश हैं वो विकसित देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन सेल प्रोपेल्ड इंजन बनाए हैं। तो भारत उन देशों की श्रृंखला में जुड़ता जा रहा है जो विकसित देश है, और यही एक पॉजिटिव फैक्टर है कि भारत जल्द ही विकसित होने जा रहा है।
संजीव जी, इस चर्चा में आपने भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में